ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। बुद्ध जन्मभूमि को विश्व शांति और धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने के लिए सरकार क्रियाशील है, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। सहकारी रकम के दुरुपयोग की जांच के लिए गठित होने वाली संसदीय जांच समिति के कर्तव्यों और अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए आज हुई कार्यदल की बैठक। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क के आकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र द्वारा काम शुरू। और यूक्रेन के खार्कीव में रूस में मिसाइल हमले से 7 लोगों की हुई मौत और दर्जनों घायल। अब समाचार विस्तार से। बुद्ध की पूजा आराधना और उपदेश देकर आज 2568वीं बुद्ध जयंती मनाई गई। यह त्योहार विश्व शांति की स्थापना के लिए सिद्धार्थ गौतम द्वारा दिए गए योगदान की याद के रूप में मनाया जाता है। चूंकि बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति महापरिनिर्वाण वैशाख की पूर्णिमा के दिन पड़ता है, इस दिन नेपाल सहित दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबी बुद्ध के प्रति भावनात्मक श्रद्धा और भक्ति के साथ बुद्ध जयंती मनाते हैं। अहिंसा ही शांति और मित्रता की आधारशिला है, जैसे कई सदियों पुराने संदेशों के वाहक भगवान गौतम बुद्ध की 2568वीं जयंती आज पूरे देश में मनाई गई। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 2563 ईसा पूर्व अर्थात 2568 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा को पिता राजा सुदोधन और माता माया देवी की कोख से रूपंदेही जिले के लुम्बिनी उद्यान में हुआ था। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि सरकार बुद्ध के विचार, मार्गदर्शन और बुद्ध जन्मभूमि को विश्व शांति और धार्मिक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकास करने के लिए क्रियाशील है। 2568वीं बुद्ध जयंती एवं लुम्बिनी दिवस मूल समारोह द्वारा आज लुम्बिनी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि संसार भर के करोड़ों बौद्ध समुदाय और अन्य समुदाय भी जीवन में एक बार पवित्र तीर्थ स्थल लुम्बिनी दर्शन व अवलोकन करने आते हैं। आगे उन्होंने कहा कि लुम्बिनी के विकास के लिए सरकार लगी हुई है। पूर्वी दर्शन और विचार परंपरा के बुद्ध विचार और उसके प्रभाव को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में बुद्ध का मार्गदर्शन बहुत प्रभावशाली है। यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि लुम्बिनी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध दर्शन और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री प्रचंड ने बौद्ध विश्वविद्यालय को अपना समग्र ध्यान बौद्ध दर्शन के प्रचार पर केंद्रित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि नीति तथा कार्यक्रम के अनुसार आगामी वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देने की सरकार तैयारी कर रही है। ललितपुर की कोंजो सोम गांव पालिका द्वारा आज आयोजित त्रिमूर्ति प्रतिमा समुद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने ये बात कही। सहकारी रकम के दुरुपयोग की जांच के लिए गठित होने वाली संसदीय जांच समिति के कर्तव्यों और अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए आज हुई कार्यदल की बैठक में संबंधित दलों के शीर्ष नेतृत्व के चर्चा के बाद कल सुबह फिर से बैठक बुलाने पर सहमति बनी है। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय में हुई बैठक में नेताओं ने कहा कि बैठक के बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी अड़ान पर यथावत रहने के बाद पार्टी नेतृत्व के साथ और विचार विमर्श कल सुबह फिर बैठक करने पर सहमत हुए। सहकारी रकम के दुरुपयोग में उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लामिछाने की संलिप्तता होने की बात बताते हुए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय जांच समिति की मांग करती आई है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि गणतंत्र की स्थापना के बाद देश शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, ऊर्जा और पूर्वाधार के क्षेत्रों के विकास में छलांगे लगा रहा है। गणतंत्र दिवस 2081 के अवसर पर आज काठमांडू में गणतंत्र की उपलब्धियों के विकास के लिए पूर्वाधार शीर्षक के तहत राष्ट्रीय समाचार समिति द्वारा आयोजित फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए मंत्री शर्मा ने ये बात कही। राष्ट्रसा की फोटो प्रदर्शनी में गणतंत्र की स्थापना के बाद के महत्वपूर्ण कार्यों की 95 तस्वीरें लगाई गई है और यह प्रदर्शनी जेठ 16 गते तक चलेगी। आज ही संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सचिव रामकृष्ण सुवेदी ने रेडियो नेपाल लुम्बिनी प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय हेमन्तापुर दांग का निरीक्षण किया। रेडियो नेपाल संचालक समिति के अध्यक्ष समेत रहे सचिव सुवेदी ने प्रसारण केन्द्र की स्थिति, निर्माणाधीन भवन का भी अवलोकन किया। निरीक्षण तथा अवलोकन के क्रम में सचिव सुवेदी ने प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों को प्रदेश स्तर में रेडियो नेपाल की गरिमा और केन्द्र से प्रसारित समाचार और कार्यक्रमों को समावेशी और सभी का साझा विषय के रूप में विकास करने का निर्देश दिया। इसी तरह संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सचिव रामकृष्ण सुवेदी ने नेपाल में प्रचलित मातृभाषा का अस्तित्व समाप्त नहीं होने देने के लिए समावेशी का अवधारणा आगे बढ़ाया है। आज रेडियो नेपाल दांग द्वारा कल से आयोजित समावेशी प्रसार सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण प्रविधि तालीम एवं व्यापार प्रवर्धन अंतरक्रिया के दूसरे दिनों में संबोधन करते हुए रेडियो नेपाल संचालक समिति के अध्यक्ष रहे सचिव सुवेदी ने कहा कि रेडियो नेपाल ने समावेशी सामग्री उत्पादन में ध्यान दिया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री हितमान तामाङ ने राम ग्राम स्तूप के गुरु योजना स्वीकृति के लिए पहल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बुद्ध जयंती के अवसर पर आज पश्चिमी नवलपरासी से स्थित राम ग्राम स्तूप के अवलोकन के दौरान मंत्री तामाङ ने राम ग्राम स्तूप क्षेत्र के बृहत्तर विकास के लिए तैयार किए गए गुरु योजना मंत्रिपरिषद में स्वीकृत कराने के लिए पहल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। लुम्बिनी प्रदेश के उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मंत्री खड्ग बस्नेत ने कहा कि संघीय सरकार ने बुद्ध से जुड़े प्रदेश के समग्र स्थलों के विकास को प्राथमिकता में रखना चाहिए और उसके पहल के लिए मंत्री तामाङ को आग्रह किया। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि जनता के मन जीतने के हिसाब से एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने निर्वाचन क्षेत्र झापा वार्ड नंबर 5 अंतर्गत एमाले दमक के दूसरे नगर अधिवेशन के उद्घाटन के दौरान अध्यक्ष ओली ने कहा कि पार्टी भीतर के द्वंद्व के कारण दमक नगर पालिका में एमाले को नेतृत्व गंवाना पड़ा है। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति धनराज गुरुङ ने कहा कि राजनीतिक प्रवृत्ति भले ही खराब है लेकिन व्यवस्था खराब नहीं है। आज हेटौड़ा में प्रजातांत्रिक विचार समाज मकवानपुर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उपसभापति गुरुङ ने कहा कि यदि नेपाली राजनीति में खराब प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के बाद निराशा को आशा में बदला जा सकता है। उपसभापति गुरुङ ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से जुड़े किसी भी दल के नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार है। बर्दिया में बाघ के आक्रमण से आज एक महिला की मौत हो गई। मरने वालों में बांके की बैजनाथ गांव पालिका वार्ड नंबर 8 हसनापुर की 35 वर्षीय मनीषा रोकाय शामिल है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय बर्दिया के प्रहरी डीएसपी तुलसीराम अर्याल ने दी। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 के आकांक्षा पूरा करने के उद्देश्य अनुरूप सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापना किया है। सिंहदरबार स्थित पुराना गृह मंत्रालय में कार्यालय के केंद्र ने अपना काम शुरू किया है। ये जानकारी मंत्रालय के उप सचिव तथा साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार महर्जन ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के खार्किव में रूस के मिसाइल हमले से 7 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों घायल हुए हैं। खार्किव के गवर्नर ओलेह सिनेहुबोव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने 2 लोगों को लापता होने का दावा भी किया है। ओलेह ने स्थानीय निवासियों को घर के अंदर रहने के लिए कहा है। यूक्रेन की सरकारी रेलवे कंपनी ने दावा किया है कि रूस से हमलों से उसके कई ठिकानों को नुकसान पहुंचा और उसके कई कर्मचारी भी घायल हुए हैं। यूक्रेन के मोर्चे को कमजोर करने के लिए रूस ने खार्किव में हमलों में बढ़ोतरी की है। ओलेह ने कहा कि बोबचांसक ने आसपास लड़ाई जारी है, लेकिन हालात यूक्रेन की सेना के काबू में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन की कमजोर एयर डिफेंस का फायदा उठा रहा है। जेलेंस्की लगातार अपने सहयोगियों से एयर डिफेंस की मजबूती के लिए आधुनिक लड़ाकू जेट विमानों की मांग कर रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि उनका इरादा खार्किव पर कब्जा करने का नहीं है और वह रूस की सीमा पर सुरक्षा घेरा बनाना चाहते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बुद्ध जन्मभूमि को विश्व शांति और धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने के लिए सरकार क्रियाशील है, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। सहकारी रकम के दुरुपयोग की जांच के लिए गठित होने वाली संसदीय जांच समिति के कर्तव्यों और अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए आज हुई कार्यदल की बैठक। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क के आकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केन्द्र द्वारा काम शुरू। और यूक्रेन के खार्किव में रूस के मिसाइल हमले से 7 लोगों की हुई मौत और दर्जनों घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।